ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தசஸ்லோகி பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ விஷ்ணு வல்லபானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஜரா தியான் தீஜியே, அனுபவ கே அதீன் ஹி ஸ்மரண் ஹோதா ஹை. அச்சா, அனுபவ பூர்வக் சன்ஸ்கார் பனேகா और उसी संस्कार का स्मरण होगा. तो स्मरण जो है अनुभव के अधीन है. अब अनुभव हमें क्या करना है? जिस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान, वेदांत की एक अपनी प्रक्रिया है, एक उसकी विधि शैली है और एक निषेध शैली है. निषेध के द्वारा यहां पर जो कहा जा रहा है, न भूमि न तोयम न तेजो न वायु, इसमें अन्य मत मतांतरों का भी निराकरण किया गया है और साथ ही इन सब को निषेध करके अंतिम में जो बचा वह मैं हूं. इसमें अन्वय जो करेंगे, कल से आप लोग श्लोक लेके बैठोगे तो मालूम पड़ेगा. सबसे पहले लेना है अहम. अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्धस्त तदेको वशिष्ठः शिव केवलोहम. अहम, वह अहम कौन है? तो अहम प्रत्ययालंबनम. अहम के प्रतीति जिसके माध्यम से हो, जिसका आलंबन लिया जाए, जिसका सहारा लिया जाए, वह अहम प्रत्यय क्या है? तो कहा एक. अहम एक. एक का ही अर्थ होता है अद्वितीय. मंत्र भी आता है एकमेवा द्वितीयम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. एकम एव अद्वितीयम, एक भी कहा है और अद्वितीय भी कहा है और बीच में रख दिया एव. इसका मतलब क्या होता है? एक ही क्या है? एक ही. एक ही है तो फिर अद्वितीय क्यों कहा? अंग्रेजी में अद्वितीय के लिए क्या प्रयोग होता है? रेयर, नॉन ड्युअलिटी. नॉन ड्युअलिटी तो हो गया अद्वितीय. और एक का, एक के लिए वन होगा केवल, सिंगल. सिंगल और नॉन ड्युअलिटी में कोई अंतर है? समझने की बात है, क्योंकि उपनिषद का मंत्र है, कुछ तो कहना चाहते हैं. यदि एक बोलने से काम चल सकता है तो अद्वितीय बोलने की जरूरत क्या है? अद्वितीय बोल के काम चल जाता तो एक कहने की क्या आवश्यकता थी? कुछ तो कह रहे हैं ना. तो आप लोग सुने नहीं हो इतने दिन से, क्या सुना फिर? इसमें लिखा है ऐसा कि एकम एव अद्वितीयम इति श्रुतौ. श्रुति में जो आया है एक पदेन सजातीयस्य और अद्वितीय पदेन विजातीयस्य. एक पद के द्वारा जो सजातीय भेद है ना, उसका निराकरण किया गया और अद्वितीय जो कहा है इससे विजातीय का निराकरण किया गया. दोनों के निराकरण करने के लिए एव, एव का प्रयोग किया गया कि सजातीय और विजातीय का जो धर्म है वो ब्रह्म में नहीं है. थोड़ा सा जोर भी पड़ेगा दिमाग पे, लेकिन बहुत समझने वाली बात है. श्लोक में आया है कि अहम एकह, एकह का ही अर्थ किया अद्वितीय. अवशिष्ट, अहम एक अवशिष्ट. अहम प्रत्यालंबन जो अद्वितीय है वही एकमात्र अवशिष्ट रहता है, बचता है. अवशिष्ट का अर्थ कर दिया सर्वद्वैत बाधे अपि अबाधित. सारे द्वैतों के बाध करने के बाद भी जो अबाधित रहता है. अब इस अबाधित बात को समझने के लिए जो हम लोग बिंबवाद प्रतिबिंबवाद आदि की बातें करते हैं, इस परमात्मा का, जिस परमात्मा ने इस जगत को बनाया, उस परमात्मा से इस जगत का कौन सा संबंध है, कोई बता सकता है? संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, कालिक संबंध है, कौन सा संबंध है? आध्यात्मिक संबंध में क्या लेंगे? संबंध में, संबंध को संस्कृत में बोलते हैं दुष्ट। दुष्ट समझिए, जैसे पति और पत्नी विवाह हो गया, थोड़ा सा संसार की बात भी करते हैं जिससे जल्दी समझ में आ जाए। घर में बहू आई बनकर के, सास क्या अपेक्षा करती है कि तुम्हारी अब शादी हो गई, तुम अब बेटी नहीं रही, क्या हो गई? बहू हो गई, मतलब अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। लेकिन यदि बहू कहे कि जैसे मैं किसी की बेटी थी, अब मुझे बदलना पड़ेगा, तो आपका बेटा भी किसी का दामाद हो गया, उसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? वो नहीं हो सकता है, वो तो जैसा है वही रहेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा। जब ये बात आती तब खींचातानी होती है। परमात्मा के साथ यदि जगत का कोई संबंध माना जाए, या तो परमात्मा में बदलाव आए तब जगत में भी बदलाव आ गया मान लो, या जगत में बदलाव आया तो परमात्मा में भी बदलाव लाना पड़ेगा तब संबंध माने, नहीं मानेंगे तो खींचातानी है। बहू को बदलने के लिए कहा जाए और बेटा वहीं रहे तो बात नहीं बनेगी। जैसे उसको बदलना है तो उसको भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना है तो दोनों ना बदले, तब बात बनेगी। इसलिए संबंध होता है दुष्ट, दोनों में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। क्या जिस परमात्मा ने इस जगत को बनाया उस परमात्मा में कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया। जगत में फिर परिवर्तन किस बात को लेके हम मानते हैं? इसमें जो दो ऐसे हैं, एक सांख्यवादी और एक शून्यवादी। सांख्यवादी वाले तो ऐसा बोलते हैं कि वो है होकर के भी नहीं है जैसा है, होकर के भी नहीं है जैसा है। और एक तो बोलता है नाम के लिए चीज ही नहीं ही है, है ही नहीं कुछ। अब हम क्या बोलेंगे? है होकर के नहीं है भी नहीं हो सकता है, और नहीं है ये तो तीनों काल में नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो है, सबको प्रतीति हो रही है। उसके लिए हमने एक जगह देखा था प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब का लक्षण जहां किया है, ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, ये आप लोग थोड़ा याद रखोगे समझ में आ जाएगा। कि परमात्मा ने इस जगत को बना करके भी अपने को कैसे रखा, और ये जगत भी किस रूप में है, जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब का मोटा मोटा अर्थ है ब्रह्म जो बिंब रूप है, उसके माया में परछाई पड़ना ही प्रतिबिंब है। और इस प्रतिबिंब के लिए चीज कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए तीन दृष्टांत दे रहे हैं। स्वरूप अनपहाने न पर रूप सदृक्षताम प्रतिबिंबत्वम एवाहु खड़गादर्श तलादिवत। खड़ग आदर्श और तल आदि आदि से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तीन मुख्य रूप से नाम लिया। आप लोग जग रहे हैं ना? हाँ। स्वरूप अनपहाने न, स्वरूप में कोई हानि नहीं आएगी। और पररूप सदृक्षता, जिसमें वह चीज दिखाई देगी तो पूरी दिखाई देगी। महिमन स्त्रोत्र याद होगा तो एक श्लोक आता है, क्या है वो? विश्व दर्पण दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र है। वियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद गमरुचि प्रवाहो वाराम्यः प्रिशत लघु दृष्टः शिरसिते। बस इतनी सी बात अभी ले लो। ये श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान शंकर के जटा में आई गंगा जी, कैसी थी वो गंगा? वियद व्यापी, वियद आकाश गंगा, पूरे आकाश में व्याप्त रहने वाली गंगा। वियद व्यापी तारा गण गुणित, तारा गण पूरे आकाश में दिखने वाले नक्षत्र मंडल को जो व्याप्त करके रहने वाली। फेनोद गमरुचि, ऐसे जिसमें झाग ही झाग गंगा जल में। और वह गंगा जी जब आई कहां, वियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद गमरुचि प्रवाहो वाराम, वाराम मतलब जल का जो प्रवाह है। प्रवाहो वाराम यह प्रिशत, प्रिशत का मतलब बूंद। कैसे बूंद? लघु दृष्ट, छोटी सी बूंद की तरह गंगा जी दिखने लगी भगवान शंकर के जटा में आने के बाद। बाकी समय में आप देख सकते हैं, बहुत गहराई से विचार करके आप ध्यान देना। सवेरे सवेरे बम्बे में ओस पड़ती है क्या? अच्छा, पड़ जाती है? मुझे तो नहीं लगता यहां पड़ती होगी। सवेरे घूमने जाओ और उस ओस के बूंद में कभी अपना चेहरा देखना। भले हमें नहीं दिखाई देगा वो अलग बात है, और यदि दिख गया तो जितना चेहरा होगा पूरा दिखेगा। उस बूंद के अंदर ऐसी सामर्थ्य है। और तो और छोड़िए, एक बार किसी महात्मा ने विनोद की बात सुनाई, कोई होंगे महापुरुष, बोले महाराज आप अपने फोटो ज्यादा मत खींचने देना। बोले क्यों? वो फोटो खींचते खींचते ना फिर आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, सारी शक्ति चली जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई ना, ऊपर गंगा जी में बांध बांध दिया, बोले बिजली बनाने के लिए बनाया तो गंगा जी में वो सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जब ऊपर बिजली निकल जाएगी तो उसमें तो ताकत निकल गई, तो आगे फिर वो गंगा जल कैसे काम करेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो जब फोटो खींचेगा तब मेरी शक्ति जाएगी, और जब तुमको लोग दुनिया वाले दिन रात देखते हैं उससे तुम्हारी शक्ति नहीं जाएगी। बोले देखने से तो उधर से भी आती है ना, फोटो जो खींचते हैं उसमें से केवल लेना होता है, और जो ये देखते हैं उसमें लेना देना दोनों होता है। ये एक बुद्धि का भ्रम है, ये ऐसा मानना उचित नहीं लगता है। तो मजाक वाली बात हो सकती है। हमारी बुद्धि देखो ना, हमारे शास्त्र में कितनी प्रशंसा की जाती है। अच्छा, बुद्धि का उपयोग किया जाए तो बुद्धि घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। ये कोई कहे कि ज्यादा उपयोग मत लेना, बुद्धि घिस जाएगी, फिर दिमाग काम नहीं करेगा। बल्कि जो लोग काम नहीं करते तो बोलते रहे अपने दिमाग का कुछ उपयोग करो, बैठे बैठे कहीं जंग न लग जाए। यहां बुद्धि के उपलक्षण में ही खड़ग का जो दृष्टांत दिया है, खड़ग के जो धार है, चमकती हुई धार में जैसा दिखने वाला चेहरा प्रतिबिंब, वहां शंका उठाई कि आदर्श कांच का तो दृष्टांत समझ में आता है, उसमें चेहरा दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, खड़ का ही दृष्टांत क्यों दिया? खड़ का नाम पहले क्यों आया? बोले खड़ग में तीक्ष्णता भी होती है। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तेज भी हो और तीक्ष्ण भी हो, और साथ में कांच में कदाचित काटने आदि की सामर्थ्य आ सकती है लेकिन टूटने का डर रहता है। और तलवार से खड़ग से जितना भी काटा जाए उतने ही उसकी धार तेज होती है, पड़े पड़े तो जंग लग जाए। तो खड़ग के दृष्टांत से समझा दिया कि जिसके बुद्धि में एक तो टिकाव है, टिकना है ना, जितने काटते जाएंगे उससे भी खड़ग में और मजबूती आएगी, और दूसरा धार उसके तीक्ष्ण होगी। ऐसे चमकती हुई धार वाले खड़ग के अंदर जो चेहरा दिखता है उसका नाम रखा प्रतिबिंब। अर्थात हमारी बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए। बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की जाती है शास्त्र में जगह जगह। शरीर कितना भी सुंदर हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई कह दे इसके पास दिमाग नहीं है। सब कुछ तो ठीक है लेकिन दिमाग नहीं, उसके कोई वैल्यू है? कोई नहीं पूछेगा। भले ही रूप कुरूप है, जैसा भी है, चलो जैसा भी है, भगवान इसके दिमाग बहुत तेज है। अरे दिमाग का काम ऐसा चलता है, लोग डिग्री ले लेते हैं ना कई बार, बोले इसके दिमाग कितना तेज है। एक बार वो कोई पाइप ऐसा था टेढ़ा टेढ़ा, उसमें तार घुसाने के लिए योजना बना रहे थे, कैसे जाएगा तार, कोई डाले थोड़ा जाके आगे अटक जाए। तो तीन चार दिन तक जो दो चार लोग थे पढ़े लिखे, अपने डिग्री के हिसाब से उपयोग कर रहे थे बुद्धि का, परेशान हो गए, तार जा नहीं रहा, निकले कैसे। वहीं पर एक ऐसा अनपढ़ आदमी भी देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा आप लोगों ने कर लिया पूरा प्रयास? बोले हाँ। अब मैं कुछ करूं? बोले हाँ भाई कर। हाँ, आप थे क्या वहां? तो चूहा कोई बम्बई वाला नहीं रहा होगा, उधर का होगा कोई, बम्बई का बड़ा चूहा होता है, जाएगा नहीं अंदर। चूहा क्या बोलते हैं, बुश क्या होता है? नहीं, रेड तो इंग्लिश में हो गया ना, वो बड़ा जो चूहा है, घुस। अच्छा हाँ, वो घुस है, वो नहीं जाएगा उसमें। वो छोटा वाला चूहा रहा होगा, चूहिया समझ लो, और उसमें बांध दिया, वो फट से निकल गया। डिग्री अपनी जगह, बुद्धि अपनी जगह। बुद्धि युक्त हो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धिया विशुद्धया युक्त। बुद्धि का बड़ा महत्व है। तो स्वरूपानपहाने न पररूप सदृक्षताम प्रतिबिंबत्वमेवाहु खड़गा दर्श तलादिवत। कांच में भी चेहरा दिखने पर भी जिसके सहारे से हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, बिंब को देखते हैं, प्रतिबिंबित करने वाला आदर्श मतलब शीशा, वह हमें ठीक से नहीं दिखता। जिसके सहारे से हम चेहरा देखते हैं, चेहरा तो सबको दिखता है शीशा में, शीशा की तरफ कितने लोग ध्यान देते हैं? कोई नहीं देता। और कई बार गाड़ी में आप बैठे हो, कांच एकदम साफ हो ना, कई बार भ्रम हो जाता है। एक आदमी बता रहे थे भी, रास्ते में सुना रहे थे, बोले क्या कहूं जी, वो ट्रेन में वो वॉश बेसिन होता है ना, उसी में गुटखा वाले जाके थूक देते हैं। बाथरूम में गए तो कांच के ऊपर थूकते हैं, पूरे पेंटिंग करके आ गए। किसी ने कहा कैसा पान खा के थूका है? तो जिसको सुनाया बोले क्या कहूं, मेरे बड़े भाई से भी ऐसा भ्रम हो गया था। एक बार गाड़ी में बैठे थे, कांच लगा हुआ था, उनको लगा खुला है खिड़की, जैसे फेंका होगा तो तब मालूम पड़े तो बंद है। जिस शीशे में हम चेहरा तो देखते हैं लेकिन शीशा को भी देख नहीं पाते, ऐसे प्रतिबिंबित होने वाले जो अभी दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र नहीं सुना रहे थे, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत भूतम यथा निद्रया, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, सबका निषेध करके अहम एकः अवशिष्टः शिवः, और साथ में जोड़ा है केवलः। केवल का अर्थ भी किया है निर्धर्मकः, किसी भी धर्म से हम लिपायमान नहीं होते। अच्छा, लिपायमान भी नहीं हुए, मान लिया। अब इसको सिद्ध करने के लिए जो तीसरा पद है, हमने तो अंतिम वाले पद को पहले बताया क्योंकि उस तरह से अर्थ किया है, अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्ध। तत्त्वमसी महावाक्य से इतो याद दिलाया गया, स्मरण करा दिया, लेकिन ऐसे दिन रात में होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप, जिस तीक्ष्ण बुद्धि की बात की जा रही, जहां पर उस बिंब रूपी परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंबित होगा जिस बुद्धि में, जो बुद्धि तीक्ष्ण होगी, जो बुद्धि स्थिर होगी, वहां पर सत, चित और आनंद तीनों एक साथ अभिव्यक्त होगा। शीशा आदि खर की तरह नहीं है, खर की तरह न होने से सत और चित का तो प्रतिबिंबन होता है, लेकिन आनंद कहीं न कहीं अभिभूत हो जाता है, ढक जाता है। जिसके लिए बुद्धि में जिसकी तीक्ष्णता होगी, वही सीधे सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्रतिबिंबित कर पाएगा। कांच आदि की तरह होने पर जल में भी तो दिखता है अपना प्रतिबिंब, लेकिन कैसा दिखता है, उतना सुस्पष्ट नहीं दिखता। शीशा में दिख तो रहा है, लेकिन खड़े की तरह उसमें तीक्ष्णता नहीं है, टूट सकता है, कहीं गिर सकता है, लेकिन खड़ग ऐसा है सब कुछ करते हुए भी उसमें जो प्रतिबिंबन होगा, जो प्रतिबिंब पड़ेगा, तीक्ष्णता और स्थिरता को लेकर के खड़ग वाला दृष्टांत प्रबल पड़ता है। तो सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा है, उसको प्रतिबिंबित करने के लिए खड़ग के समान जब हमारी बुद्धि होगी, तब हम तीनों को एक साथ जो अनुभव करते हैं, अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्ध। एकांतिकत्वात् का मतलब होता है विनाशित्वात्। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो है पांच भूत, जिसमें शून्यवादी, देहात्मवादी, इंद्रियात्मवादी, इंद्रिय को आत्मा मानने वाले, देह को आत्मा मानने वाले, इन सब का निराकरण किया। हम लोगों के दिन रात सुषुप्ति अवस्था में जो निर्विषयक, निर्धर्मक अपने आत्मस्वरूप का जो अनुभव होता है, उसी को हम जागृत अवस्था में याद करते हैं और क्या बोलते हैं, सुखम अहम अस्वाप्सम नाहम किंचित अवेरिशम। पंचदशी के स्वाध्याय करने वाले भी यहां होंगे बहुत से लोग। कितने श्लोक हो गए अभी, तो पहला प्रकरण ही चल रहा है ना, 28-30 श्लोक हो गए। हाँ, तो शुरू में सिद्ध किया है सुषुप्ति अवस्था, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृति स च अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदात्म। ज्ञान बोलते जानना, जानने में सुख है या नहीं जानने में सुख है? आप लोग घबराओ मत, कुछ भी बोलो चलेगा। जानने में सुख है कि न जानने में? न जानने में। फिर आप लोग यहां क्यों बैठे हो? जानने के लिए बैठे, फिर बोलते नहीं जानने में सुख है। हाँ, ये तो है। गहरी नींद में जाने के बाद यदि वहां थोड़ा भी सपना देखने लग जाओ या ठीक से नींद ना आवे, तो सवेरे बेचैनी होती है, आज नींद नहीं आई। उस नींद में कहां हम जाते हैं? अपने स्वरूप से ही मिलन होता है, लेकिन तम निद्रा रूपी दोष के कारण उस समय हम बोल तो नहीं पाते कि यही आनंद है, लेकिन उसका जब अनुभव होता है तो जागृत अवस्था में हम स्मरण करते हैं। भूतकाल है कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। सुखपूर्वक में क्या कारण था? तो बोले न अहम किंचित अवेरिशम, मैंने वहां कुछ भी नहीं जाना। अर्थात जब तक हम जानने वाले बने रहते, तब तक कहीं न कहीं द्वैत बुद्धि तो है, दृष्टा दृश्य का व्यवहार चलता है, जहां पर सब के सब एक साथ संपरिस्वक्त हो गए, एक हो गए, मिल गए। पक्षी का जैसे घोंसला में चले जाना, ये संबंध जो है ना परमात्मा का, जिसका हमने शुरू में बताया, तो इसका भी विचार करेंगे आगे कि कैसा संबंध है। संबंध भी कई प्रकार का होता है। परमात्मा के साथ हम लोगों का जो संबंध है ना, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते, उसको क्या बोलते हैं, एक वस्तु को दूसरे में जो मिला देते हैं, पानी को पानी में मिलाएंगे तो क्या बने, मर्जिंग। ये मर्जिंग वाला संबंध है। यहां पर अवयव अवयवी का भाव रखेंगे, कालिक संबंध मानेंगे, पोष्य पोषक भाव संबंध मानेंगे, वो सब नहीं चलेगा। हाँ, पोष्य पोषक भाव में थोड़ा प्रेम तो होता है, उसका भी बहुत दृष्टांत उदाहरण सब आता है। अभी तो कोई बात नहीं, पहला दिन है, सुनते रहिए। तो ये जो मर्जिंग वाला सिस्टम कैसा है, हम लोग उसी में रहने के लिए, उसी को पाने के लिए दिन रात लालायित है। और इसका अनुभव सबको कहां है, तो अनैकांतिकत्वात् सुषुप्ति एक सिद्ध। इसकी सिद्धि यदि है तो सुषुप्ति अवस्था भी है, और उसी को जब हम जागृत अवस्था में याद करते हैं तो इसका नाम रख दिया प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है जहां पर अनुभव और स्मृति दोनों एक साथ हो। जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था के बात को याद कर रही स्मृति है, और कितने गहरी नींद में सोया, बड़ा आनंद आया, इसका जो वर्णन कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है। स्मृति होती है जिसका अभी बताया था ना, अनुभवायत्तम, अनुभव के अधीन है स्मरण। यदि गहरी नींद में आनंद का अनुभव नहीं हुआ होता तो जागृत अवस्था में हम उसका वर्णन कैसे करते, इससे पता चलता है वही एक है, वही अवशिष्ट है, वही केवल है जो मैं हूं। अब और क्या क्या है ये सब, फिर कल से जरूर सबको रखना है, 10 श्लोक का उच्चारण करेंगे और इसके आधार पर आप लोग श्रवण कीजिए। हरिओम।